आज का श्लोक बता रहा है कि हम भगवान के प्रेम की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं और भगवान के धाम कैसे जा सकते हैं, तो उसके बारे में चर्चा होगी। मेरे पीछे बोलिएगा, पुरेह भूमन बहवो पियोगिनास, त्वदर्पितेहा निज कर्म लब्धया, विबुध्य भक्त्येव कथोपनीतया। प्रपेदिरेञ्जोचुत ते गतिं पराम। एक बार हम और बोलेंगे क्योंकि बहुत सारी चर्चा करनी है, इसलिए एक ही बार और बोलेंगे। पुरेह भूमन बहवो पियोगिनास, त्वदर्पितेहा निज कर्म लब्धया, विबुध्य भक्त्येव कथोपनीतया। प्रपेदिरेञ्जोचुत ते गतिं पराम। शब्दार्थ आप देख रहे हैं, शब्दार्थ हम चर्चा करेंगे जैसे जैसे श्लोक हम पढ़ते जाएंगे। अनुवाद, हे सर्वशक्तिमान, भूतकाल में इस संसार में अनेक योगी जनों ने अपने कर्तव्य निभाते हुए तथा अपने सारे प्रयासों को आपको अर्पित करते हुए भक्ति पद प्राप्त किया। हे अच्युत, आपके श्रवण तथा कीर्तन द्वारा संपन्न ऐसी भक्ति से वे आपको जान पाए और आपके शरण में जाकर आपके परम धाम को प्राप्त कर सके। अब हम लोग टीका को पढ़ते हैं। ज्ञान तिम्रांदस्य ज्ञानंजन श्लाके चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदान स्वामित्य नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष निवादी पाश्चात देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैंने इससे पहले वाले श्लोकों में भी बताया था कि ब्रह्मा जी अपने एक दिन में, कम से कम एक दिन में, बहुत सारे लोगों को भगवत धाम जाता हुआ देखते हैं। इसलिए हमारा टाइम एंड ट्राइड मेथड है, पक्का मेथड है, पक्का तरीका है जिसके द्वारा भगवत प्रेम या भगवत धाम की प्राप्ति की जा सकती है। तो अब यहाँ वो क्या कह रहे हैं, जरा देखिए। एवं श्लोक द्वयेना, अर्थात इन दो श्लोकों में, सॉरी, इस प्रकार पिछले दो श्लोकों में अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, किस प्रकार से अन्वय मतलब सीधा तरीका क्या है भक्ति प्राप्त करने का, और गलत तरीका जिसको अपना करके हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, दोनों का व्याख्यान किया था। याद दिलाने के लिए बता रहा हूं। स्थाने स्थितः श्रुतिगत, ठीक है, अपने स्थान पर रह के भगवान के बारे में नम्रता से सुनना। हृदवाग वपुर भी नहीं, ये आगे श्लोक आएगा। तो नमंती, जीवंती और नमंती शब्द आए थे, यानी कि कथा के लिए ही अपना जीवन यापन करना, भगवान की कथा अधिक अधिक सुनना, इसके द्वारा प्रेम प्राप्ति होती। ये हो गया अन्वय, अर्थात सीधा तरीका, ये तरीका है, ये करना है। और व्यतिरेक बोला गया था कि भक्ति को कोई त्याग दे और शुष्क ज्ञान का अनुशीलन करे तो कैसा है, भूसे की तरह है। भूसा कूटने से क्या होगा, फाइन भूसा मिल जाएगा, केवल क्लेश प्राप्त होगा। तो व्यतिरेक मतलब ये नहीं करना है, ये बताया गया था, ठीक है। व्यतिरेकाभ्याम मतलब दोनों, दो के रूप में आ रहा है, दो द्विवचन है। भगवत प्राप्तौ भक्ति में व स्थिरीकृत्य तत्र सदाचारम प्रमाणयति पुरेति। पूरा शब्द से, पूरा मतलब होता है पहले के लोग, कई बार हम लोग से बोलते हैं पहले के लोगों ने ऐसा किया था, तो इसके द्वारा पूरा शब्द से सदाचार का प्रमाण दे रहे हैं। सदाचार मतलब पहले के भक्तों ने क्या किया, सही आचरण, सद आचरण क्या है। सदाचार का अर्थ समझते हैं आप लोग, हिंदी बोल रहा हूँ, संस्कृत नहीं, आप घबराइए मत, आपको बिल्कुल हिंदी जैसा ही लगेगा। सदाचार सुने हैं ना आप, दुराचार समझते हैं, तो सदाचार क्या होगा, अच्छा आचरण। सही आचरण क्या है इसका प्रमाण दे रहे हैं। समझ में आने, प्रमाण क्या है कि पहले के योगियों ने भी क्या किया है वो देखिए, उसी के अनुसार पिछले के दो श्लोकों में प्रमाण दे रहे हैं कि पिछले दो श्लोकों में समझाया, और इस श्लोक में वो कह रहे हैं कि पहले बहुत सारे योगियों ने इस प्रकार से भक्ति करके आपकी प्राप्ति करी। अब यहां पे शब्द आप अगर आपके पास टीका है तभी आप देख सकते हैं, भगवत प्राप्तौ भक्तिमेव स्थिरीकृत्य, भक्ति ही भगवत प्राप्ति का एकमात्र साधन है, इसको स्थिरीकृत्य कर रहे हैं, मतलब पुष्ट कर रहे हैं, मतलब ये सिद्धांत को एकदम स्थापित कर दे रहे हैं। समझ रहे हैं स्थिरीकृत्य का अर्थ क्या हुआ, स्थिर मतलब क्या होता है, फिक्स्ड। ये सिद्धांत एकदम स्थापित कर दे रहे हैं कि भक्ति के द्वारा ही भगवत प्राप्ति होती है। ठीक है, हो सकता है कि संस्कृत में थोड़ी गलती हो लेकिन भाव हम पकड़ने का प्रयास कर सकते हैं, मतलब मेरी संस्कृत में नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार अनुवाद आप देख रहे हैं, इस प्रकार दो श्लोकों में अन्वय और व्यतिरेक रूप से भक्ति का ही भगवत प्राप्ति का एकमात्र उपाय निर्धारित करते हुए सदाचार का प्रमाण दे रहे हैं। तो भक्ति के द्वारा ही हम भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कर सकते हैं। अब वो कह रहे हैं हे भूमन, भूमन का मतलब होता है प्रभु, महान, जो हर काल में है, हर देश में है, और हर काल हर देश में हर जगह महान शक्तिशाली। और ये ध्यान देना चाहिए कि ब्रह्मा जी छोटे कृष्ण को बोल रहे हैं, भूमन मतलब महान। ठीक है, इह जगति योगिनो भक्ति योगवंतः, इस इह मतलब इस जगत में जो भक्ति योग हैं, योगिनो का अर्थ है पूरे है भूमन बहवोपि योगिना, बहवो मतलब होता है बहुत सारे, योगिना तो योगिना मतलब भक्ति योगवंतः, जो भक्ति योग से युक्त हैं उन्होंने एवं इस प्रकार त्वयैव अर्पिता इहा चेष्टा, आपको अपनी इहा अपनी चेष्टाएं अर्पित करें। चेष्टा अर्पित करने का मतलब है जो नित्य हम कार्य करते हैं वह सब भी भगवान को समर्पित कर दिए। नहाना भक्ति है, अब इसको हम बड़ा आसानी से समझाते हैं, नहाना भक्ति है, आप कहेंगे हाँ है, क्योंकि मंगल आरती करना है या सुबह जप करना है, भगवान की सेवा करनी है, तो उस भक्त का, इन भक्तों का, इन योगियों का नहाना भी भक्ति हो जाता है। खाना बना रहे हैं तो किसके लिए बना रहे हैं, भगवान के लिए बना रहे हैं। जो अन्य लोग हैं वह केवल अपने कोई कदाचित कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई यज्ञ करते हैं, उसको भगवान से कनेक्ट करते हैं, वो भी अच्छा है, लेकिन यहां जो भक्त हैं वो क्या है, वो सारे कर्मों को भगवान से कनेक्ट करते हैं। क्या ये समझ पा रहे हैं, बच्चों को पालन करना क्या ये भक्ति है? तो यानी बच्चों को ऐसा वातावरण दें कि वे भक्ति के परिवेश में पनप सकें और वो भी भक्त बन सके, तो वह भी भक्ति का एक अंग है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं या मेरी नहीं, ब्रह्मा जी की बात समझ पा रहे हैं? सारे चेष्टाओं को भगवान को समर्पित करना। देखिए यहां ये नहीं लिखा है कि ब्रह्मचारियों ने ही भगवान को प्राप्त किया है, योगी अर्थात भक्त। जैसे भगवान गीता में बताते हैं कि कोई असफल साधक है वो योगियों के जन्म लेता है, तो ब्रह्मचारियों का तो जन्म ले नहीं सकता, वानप्रस्थों के या सन्यासियों का तो ले नहीं सकता। तो जन्म लेने का वे बोल रहे हैं कि योगियों का जन्म लेता है, तो मतलब क्या हुआ भाई, गृहस्थों का जन्म लेता है, इजंट इट नेचुरल सी बात है ना। तो योगी का अर्थ ये नहीं है कि गृहस्थ भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, सारी चेष्टाओं को भगवान को समर्पित करना। इससे हमें यही सीखना चाहिए कि भगवान के संबंध में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अपने शक्ति को इन्वेस्ट कहां करो, इन्वेस्ट मतलब निवेशित कहां करो। एक छोटी सी कहानी बता देना चाहता हूं उस संबंध में। एक आदमी था और वह पूरा जीवन बैंक में पैसा जमा करता रहा, मैंने भेजा था रिफ्लेक्शन लिंक, थोड़ा समझा रहा हूं। तो उसको डॉक्टर ने बोला कि आप 4 दिन बाद हृदय के हार्ट अटैक से मर जाओगे। तो उसने कहा चलो जाके देखता हूँ कि कितना पैसा है अकाउंट में। तो अकाउंट में जाके देखा कुछ पैसा नहीं है। तो बैंक मैनेजर के पास गया, उसने कहा कि भाई मैं तो पूरा जीवन पैसा जमा किया, देखिए ये मेरी स्लिप इसमें है। तो कहते नहीं आपने गलत अकाउंट में पैसा जमा कर दिया था पूरा जीवन भर, उसी प्रकार से और उसी वजह से तुरंत उसको हार्ट अटैक पड़ गया, मर गया वो। तो हम देख सकते हैं कि पूरा जीवन हम केवल भोग के लिए या लौकिक चीजों में अपना समय शक्ति निवेशित करते रहते हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं। मृत्यु को अगर रख दीजिए तो कुछ काम नहीं वाले वाला। तो सही अकाउंट में पैसा डालने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे ब्रह्मा जी कि क्या है शब्द इसमें, त्वयि अर्पिता इहा, इहा का अर्थ है चेष्टा। सारी चेष्टाओं को हम कुछ करते हैं ना, कर्म करने को से पहले कुछ प्रयास करते हैं उसको चेष्टा कहा जाता है। तो चेष्टा सब भगवान को समर्पित होनी चाहिए। उसके बाद कह रहे हैं यस त्वद भक्त्यर्थमेव सर्वेंद्रिय व्यापारम कुर्वाणः इत्यर्थः। इसका अर्थ बड़ा सुंदर यहां पे कह रहे हैं कि जैसे, इसको अर्थ समझ लीजिए, आपकी भक्ति प्राप्त करने के लिए अपने सारे इंद्रिय के व्यापार करते हैं। अगर आप टीका पे देख रहे होंगे तो बड़ी आसानी से समझ में आ गया, आंख से देखते हैं, आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, तो सारे इंद्रियों के व्यापार भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए करते हैं। ये विज्ञान समझ में आ रहा है भक्ति प्राप्त करने का, आंख से भगवान को देखना, कान से भगवान के बारे में सुनना, जीभ से भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, हाँ इस प्रकार से अपने हाथ पैरों से, पैरों आप पैर लगा के भगवान के धाम में जाते हो या भक्तों की कथा में जाते हैं सुनने के लिए, और हाथों से भगवान की सेवा करना, तो ये इंद्रियों का व्यापार है कि नहीं भाई। जैसे इस घर से एक सामान्य गृहिणी जब सुबह उठती हैं तो सुबह उठते ही सोचती क्या, मैं एक फलाने व्यक्ति की पत्नी हूँ या माँ हूँ, तो उस कारण से उनके सारे इंद्रिय के व्यापार पति और बच्चों की सेवा में लगते। ये तो समझ में आ रहा है, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। उसी प्रकार से जब भक्त सुबह उठता है तो उसका एक अभ्यास ऐसा बन जाता है कि उसे सारे इंद्रिय के व्यापार, व्यापार समझते ना, इंद्रियों के कार्य जो है वो भगवान की सेवा में लगते हैं, चाहे वो गृहस्थ आश्रम में ही क्यों ना हो। इसीलिए कम से कम एक आरती जरूर होनी चाहिए घर में, या अब नहीं हो रहा है तो कम से कम जप के लिए लोग उठे। इस प्रकार से कृष्ण केंद्रित जीवन जिए, कर्म तो करने हैं लेकिन वह कृष्ण केंद्रित होते हैं। आश्रम के अनुसार अलग अलग हो जाता है लेकिन उसका रूप अलग अलग हो सकता है, थोड़ा स्टाइल अलग अलग हो सकता है, लेकिन केंद्र जो है वह कृष्ण होना चाहिए। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है या कुछ मुश्किल हो रहा है? कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। सारी इंद्रियों का व्यापार, सारे इंद्रियों के कर्म किस लिए? ताकि भक्ति की प्राप्ति हो जाए। जैसे कोई आईएएस की तैयारी करता है तो आईएएस की प्राप्ति अर्थम, आईएएस की प्राप्ति के लिए सारे इंद्रिय के व्यापार करता है कि नहीं? आंख से किताब को देखता है, माइंड से सोचता है, बोलता है, पढ़ता है, डिस्कस करता है, लिखता है। उद्देश्य क्या है? आईएएस में क्वालिफाई हो जाना, इजंट इट? उसी प्रकार से भक्त का उद्देश्य क्या है? भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए, इसलिए सारी इंद्रियों का व्यापार भगवान के लिए। आपको लोग क्या प्रचार करते हैं? अरे भाई थोड़ा सुबह सुबह जप कर लिया, 5-10 मिनट कर लिया, बहुत है अब इतना बाकी, तुम कुछ गृहस्थी भी चलानी है कि नहीं? तो गृहस्थी भी चलानी किस लिए है? भक्ति करने के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण। देखिए ये विज्ञान है, अब उसको हम कितना चलाना चाहते हैं, कितना अप्लाई करना चाहते हैं हमारे ऊपर है, लेकिन लाभ सुनेंगे तो शायद आपकी इच्छा होगी। अब आगे क्या कह रहे हैं, भक्ति योग, मैं संस्कृत बोलूं या नहीं बोलूं? ठीक है, ऐसे समझ में आएगा, उसका बड़ी आसानी से आप समझ पा रहे हो। भक्ति योग श्रद्धावताम, यानी कि जिनकी भक्ति योग में श्रद्धा है, सही है। वर्णाश्रम कर्मान अधिकारान निज कर्म श्रवण कीर्तनाद एव। वर्णाश्रम पे इनका अधिकार नहीं होता है। वर्णाश्रम के अनुसार जिनकी श्रद्धा भक्ति में बहुत ज्यादा हो जाती है, अच्छे से हो जाती है, वह वर्णाश्रम पे श्रद्धा नहीं रखते, वह वर्णाश्रम को साधन नहीं मानते, और वर्णाश्रम साधन है भी नहीं भगवत प्राप्ति का। वो एक स्टेपिंग स्टोन है कि कम से कम व्यक्ति इंसान बन के जिए। ये नहीं कह सकते कि हम बढ़िया से गृहस्थ हो गए, बढ़िया से ब्रह्मचारी हो गए, ये हो गए तो भगवत प्राप्ति कर लेंगे, ना ऐसा नहीं है। ये सब चीजें आवश्यक हैं तभी तक जब तक भक्ति योग में श्रद्धा नहीं है। इससे शुद्धिकरण होता है लेकिन बहुत धीरे धीरे होता है। लेकिन भक्ति से जिस प्रकार का शुद्धिकरण होता है वो तो आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं, इज़न्ट इट? नहीं तो मैं संस्कृत बोल रहा हूं और आप लोग बैठे हुए हैं, ऐसा कैसे संभव है? सुनने की इच्छा है, बहुत बड़ी प्रगति हो गई। तो क्या समझ रहे हैं, उनको वर्णाश्रम श्रद्धा समाप्त हो गए, उसमें हमें कुछ नहीं कर सकते। वैसे अच्छा है क्योंकि कलयुग में वैसे भी अगर बोला जाए नियम पालन करने लिए तो हम ऐसे भी नहीं कर सकते। तो कह रहे हैं उनका निज कर्म क्या मानते हैं, श्रवण कीर्तनाद एवा, कि श्रवण करना है भगवान के बारे में, कीर्तन करना है, स्मरण करना है, भगवान का पूजन करना है, इसी प्रकार से चाहे वो गृहस्थ में हो चाहे कुछ भी हो, जप करना है, सेवा करनी है, इसमें इधर ही वो उन्मुख रहते हैं। उन्मुख समझते हैं, इसी में लगना है, इसी में लगना है। 8 घंटे आपने जो भी काम किया सो किया, उसके बाद उसको कैरी ओवर नहीं करना है घर में, समझ रहे हैं? टीवी नहीं चलाते घर आकर, भगवान की भक्ति ही करते। तेन लब्धया, अर्थात भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए विशेषतस्तु कथया श्रुत कीर्तितः स्मृत्या, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को विशेष रूप से प्राप्त करने का साधन है कथा, प्रामाणिक रूप से भगवान की कथा को सुना जाए और उसके बाद कुछ भी उसके बारे में ना बोला जाए। नहीं, कथा सुना जाए, बोला जाए, और जब बोलेंगे तो स्मरण भी होगा। जैसे मैं प्रसाद पा रहा था तो माता जी कुछ कृष्ण से इतर बात कर रही थी, तो मैंने थोड़ा सा डांटा उनको, मैंने कहा अच्छा ये छोड़िए, आज आपने भागवत में क्या पढ़ा? उन्होंने बस जस्ट बोला कि आज मैं बहुत देर भागवत में पढ़ी। मैंने क्या पढ़ा? तो जैसे ही पूछा क्या पढ़ा, तुरंत स्मरण चालू हो गया। हाँ मैंने ये पढ़ा, मैंने वो पढ़ा, ये था, कुछ सही था, थोड़ा बहुत कुछ गलत भी था, लेकिन स्मरण चालू हो गया। तो जब आप कथा के बारे में सुनते हैं उसकी चर्चा करेंगे, मैंने कई बार बोला उसको बोलेंगे तो स्मरण भी अपने आप होगा। तो ये 3 मुख्य साधन है, श्रवण कीर्तन स्मरण, ठीक है? इससे क्या कह रहे हैं, उपाधिक्येन नीतया प्राप्तया, नीतया का अर्थ है कि भगवान को प्राप्त किया, भगवान के पास पहुंच गए। मैं इस क्लास को देने से पहले विचार कर रहा था कि भगवान तो सब जगह हैं, तो भगवान के पास पहुंच गए का क्या अर्थ है, अर्थात भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त किया। उसके बाद कह रहे हैं भक्त्या, अर्थात प्रेम लक्षण विबुद्ध, यानी कि प्रेम लक्षणा भक्ति, कैसी भक्ति प्राप्त करी जिसमें उस प्रेम के लक्षण प्रकट हो रहे हैं। आज हम लोग कथा सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुनना भी चाहिए, लेकिन किसलिए सुन रहे हैं? यही कथा सुनते सुनते, नाम जप करते करते, सेवा करते करते एक दिन व्यक्ति पुलकित होने लग जाए। भक्त्या संजातया भक्त्या, भक्ति से ही भक्ति आगे बढ़ती है, या भक्ति सम्यक जात या मतलब उत्पन्न होती है, जात मतलब होता है उत्पन्न होना। जहाँ मैं, मुझे करेक्ट कर दीजिएगा जो लोग संस्कृत जानते हैं, अगर जो मैं अर्थ का समझता हूँ, भक्त्या संजातया भक्ता मतलब भक्ता, भक्त्या संजातया भक्त अर्थात भक्ति भक्ति के द्वारा ही उत्पन्न होती। हम अभी साधना भक्ति कर रहे हैं किस लिए, एक दिन भगवान की भाव भक्ति प्रेम भक्ति प्राप्त हो। आपको लगता होगा प्रभु जी लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, कहाँ प्राप्त हो रही भाव भक्ति प्रेम भक्ति, लेकिन देखिए जिस स्तर पे भी आप आज पहुंचे हो, जितने भी स्तर पे भी आप हैं, उतना आप कभी सोच भी नहीं सकते थे आज से जो भी 5 साल 10 साल पहले। अभी तो मेरे खास 10 साल वाले कोई है भी नहीं आप, तो अब यही भक्ति करते करते हम आगे कितना आगे पहुंच जाएंगे, लेकिन कर कैसे पहुंचेंगे, यहां तक कैसे पहुंचे भक्ति करके? आप कहेंगे नहीं प्रभु जी मैं तो बहुत पतित हूं, मैं तो कहीं नहीं पहुंचा, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे एक माला भी लगता है कि एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए बोला जा रहा है, नहीं तो यहां पे आप 16 माला आराम से कर लेते। तो कैसी भक्ति प्राप्त करी, प्रेम लक्षणा भक्ति, और उससे क्या किया, विबुद्ध्य अर्थात विज्ञाया, आपको समझ सके। मैंने कई बार उसको समझाया है, भगवान को समझने का अर्थ है ये समझना किस प्रकार से भगवान शाश्वत है, किस प्रकार से भगवान ज्ञानमय है, किस प्रकार से भगवान आनंदमय है, कितने माधुर्यमय है, उनके ऐश्वर्य क्या है, और ये सब जितनी हमारी मात्रा में हमारे हृदय में भक्ति बढ़ी रहती है उतनी मात्रा में हम समझ पाते हैं। जैसे बहुत सिंपल उदाहरण, क्या आपको मूंग की दाल के हलवे के बारे में पता है कि क्या होता है? हाँ बताया प्रभु जी क्या क्या दिक्कत है इसमें, मूंग की दाल होती है इसमें नमक होता है और इसमें यस तो आपको पता है कि उसमें नमक नहीं होता उसमें चीनी होती है उसका देखिए चीनी होती तो चीनी तो गुलाब जामुन में भी होती है। मेरे कहने का अर्थ है जब हलवे की बात हो रही तो आपको उसको मिठास पता होना चाहिए उसका टेक्सचर पता होना सब कुछ पता होना चाहिए तभी कहा जाएगा कि आपको हलवा पता है। ऐसे ही कृष्ण का स्वरूप क्या है आनंदमय है तो कहें कि हम कृष्ण को जानते हैं अर्थात विज्ञान के रूप में जानना चाहिए कैसे आस्वादन कितने मधुर हैं कितने ऐश्वर्यवान हैं ये सब समझ में आना चाहिए। कैसे मालूम चलेगा जितनी मात्रा में प्रेम बढ़ेगा और प्रेम कैसे बढ़ेगा कथा सुनने से। इसलिए मुख्य साधन बोल रहे हैं कथा भगवान के बारे में सुना। अब कथा का मतलब भगवान का नाम जप कथा स्मरण इत्यादि कीर्तन सब कुछ और उसको आगे बता रहे हैं क्या तद रूप तद मतलब उनके रूप गुण लीलादिकम अनुभूत्यत इति अर्थ। बहुत इजी है आप देखिए आप तो फोन बंद करके बैठे हैं तो कैसे काम चलेगा मैं इतनी मेहनत करके सिखा रहा हूं ताकि आप लोग संस्कृत देख सके। तद मतलब उनके रूप मतलब स्पष्ट है रूप गुण लीला आदि उनके परिकर सबको समझने में व्यक्ति समर्थ हो पाता है कैसे जब हृदय में प्रेम जागृत हो। उसके बाद क्या होगा पराम पराम गति को बता रहे हैं प्रेमवत पार्षदत्व लक्षणाम गतः प्राप्तः मतलब जब इस प्रकार से प्रेम से भर जाएगा तो पराम गति को प्राप्त होगा। पराम गति का अर्थ हो गया कि भगवान का प्रेम से भरा हुआ पार्षद बन जाएगा। तो हम इसको एक बार रिवाइज करते हैं कि श्लोक आप फिर से देख लीजिएगा पुरेह भूमन बहवोपि योगिनस अर्थात पुराने काल में से पहले बहुत सारे योगियों ने बहुत सारे भक्तों ने आपके चरण कमलों में अपनी सारी चेष्टाओं को अर्पित किया और निज कर्म लब्धिया अर्थात इंद्रियों के सारे व्यापारों को आपकी भक्ति के अर्थ के लिए अर्पित करके और आपकी कथा को सुन करके आपके चरणों में प्रेम प्राप्त किया और उसके द्वारा आपको समझा विबुद्ध आपको समझा और समझने का अर्थ है उनके रूप गुण लीला इत्यादि की माधुर्य को ऐश्वर्य को समझा। क्या बहुत मुश्किल हो रहा है समझना रहा है और उससे क्या किया प्रपेंदरे अंज अंज मतलब बड़ी आसानी से आपके चरणों में शरण ग्रहण करे। देखिए भगवान के चरणों में शरण करने में ग्रहण करने में दिक्कत क्या दिक्कत कुछ नहीं। लोगों को यह विश्वास नहीं है कि भगवान सर्वशक्तिमान है और भगवान सर्व कृपालु है। जितनी मात्रा में इस बात का अनुभव होगा उतना आसान हो जाएगा भगवान के शरणागत होना। बहुत सिंपल सी बात सोचिए गोविंद को आप बाइक में लेके आए थे ना अपने बच्चे को तो माता जी बच्चे को टांगी हुई थी ऐसे या बीच में रखते हैं आप लोग बाइक पे बैठ जाता है बीच में लेकिन बचपन में जब बहुत छोटा था तो आप अपनी गोदी में रखती थी यस सभी को सभी लोग देखे हैं। अब आपको बोला जाए कि आपको कोई गोदी में लेकर के बाइक बैठेगा कोई बैठेगा नहीं बैठेगा। बच्चा कितना मजे से बैठा रहता है माँ की गोद में ऐसे करके उछलता रहता है होता है ना देखते हैं ना क्यों सहज विश्वास है ये मेरी माँ है और ये मेरी रक्षा कर सकती। तो जैसे जैसे प्रेम बढ़ता है व्यक्ति अनुभव कर पाता है कि भगवान शक्तिमान है वैसे प्रेम भी करते हैं मेरी रक्षा करने में पूरी तरह समर्थ है तो उनकी और शरणागति स्वीकार करता है। और अंज शब्द मतलब होता है बहुत आसानी से। क्यों आसानी से बोल रहे हैं क्योंकि भगवान की कथा सुनने में कोई परेशानी नहीं है कोई परेशानी नहीं है आके बैठना कथा सुनिए भगवान का नाम जप करिए भगवान कीजिए इस प्रकार से बड़ी आसानी से हे अच्युत वह परागति को प्राप्त करते हैं। परा मतलब प्रेम से भरे हुए पार्षद बन जाते हैं। यहाँ पे अच्युत शब्द बहुत सुंदर है इस पर श्रील जीव गोस्वामी जी बोलते हैं मैंने कई बार समझाया है तो किसी को याद है अच्युत शब्द का अर्थ अपने भक्तों पे कभी भी कृपा करने से चूकते नहीं है। श्री राजीव गोस्वामी जी कोट करते हैं कि प्रलय में भी मेरे भक्तों का नाश कभी नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम लोग कितने महान संरक्षण में हैं ये सोच लेना चाहिए। ठीक है उम्मीद है कि आप श्लोक को समझ पाए होंगे। एक श्लोक और इसका एक अर्थ और है यद्वा यद्वा अर्थात या फिर यथा केवल बोधो विवलस तथा केवल योगश्चेत् यत्र सदाचारं प्रमाणयति पुरेति अर्थात चलिए संस्कृत नहीं बोलते दीदे जल्दी जल्दी बोल देते हैं कि ज्ञान प्राप्ति करने के लिए बहुत सारे योगियों ने योग किया लेकिन निष्फल हो गया हुकाम नहीं हुआ तो फिर वह भक्ति को स्वीकार किए। बहुत सारे बहवो योगी, बहुत सारे योगी जब निष्फल हो गए तब वह कह रहे इससे काम नहीं बनेगा, अब भक्ति स्वीकार करिए। भक्ति स्वीकार करके क्या किया उन्होंने, सारी अपनी चेष्टाओं को, वही उसके बाद सिंपल है, अपनी चेष्टाओं को आपको समर्पित किया, अपने कर्मों को समर्पित किया और उसके द्वारा भक्ति को प्राप्त करके आपको समझ पाए। एक बात ध्यान देना चाहिए, एक और आचार्य हैं श्री श्रीधर स्वामी, वो बताते हैं निजकर्म लब्ध्या का अर्थ ये भी है कि वर्णाश्रम के जो धर्म हैं उनके कर्मों को भी कृष्ण को ही समर्पित किया, भोग इत्यादि के लिए उसको नहीं किया। एक छोटा सा पॉइंट ये था, लेकिन अभी हम श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की ही टीका को लेकर चल रहे हैं तो उसको हम समझाने का प्रयास कर रहे थे। मैं एक फीडबैक लेना चाहता हूँ, ये बहुत टफ हो रहा है तो हम इस क्लास को समझ में आता है, मैं समझ रहा हूँ कि थोड़ा सा ज्यादा रिकॉर्डिंग दोबारा सुनेंगे तो फिर आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, एक बार में धारणा नहीं हो पाती। कोई प्रश्न है यहाँ तक इस श्लोक के संबंध में, तो हम एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं उसके बाद फिर हम कीर्तन करेंगे। पूरे यह मतलब इस श्लोक में बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे योगियों ने अपने इहा अपनी चेष्टाओं को आपको समर्पित करके और श्रवण कीर्तन आदि इत्यादि कर्मों के द्वारा उस भक्ति प्राप्त करी और साथ साथ स्पेशली कथा सुन करके उपनीति आपके बहुत करीब आए। क्यों करीब आए? प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त करके, आपके चरण में प्रेम प्राप्त किया इस कारण से आपके बड़े निकट आए और आपको समझ पाए। ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि जब से मान लीजिए हिमालय को आप समझते हैं, अगर मैं पूछूं कि हिमालय क्या जानते हैं आप? हाँ मोटा मोटी जानते हैं। अब यहां से बैठा हिमालय को कितना जानते हैं आप? थ्योरी में जानते हैं। आप देहरादून पहुंच जाएंगे तो हिमालय को थोड़ा और अधिक जानेंगे, लेकिन जब एकदम हिमालय में ही पहुंच जाएंगे तो समझ में आएगा कि टेम्परेचर बहुत ठंडा है, बहुत बड़े पेड़ हैं, यहाँ जंगल है, ये है वो है। तो यानी जितना करीब हिमालय के जा रहे हैं उतना हिमालय की अनुभूति बढ़ती जा रही है। उसी प्रकार से भगवान के करीब जाने का अर्थ है भगवत प्रेम की प्राप्ति। जितना प्रेम बढ़ेगा उतना भगवान के गुण और अधिक समझ में आने लग जाएंगे। और कैसे भक्ति बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है? भगवान के बारे में सुनने और पर्टिकुलरली श्रीमद् भागवतम को सुनने से। श्रीमद् भागवतम को सुनने की इच्छा होने मात्र से भगवान हृदय में आ जाते हैं और सुनने लग जाए तो कहना ही क्या। इसलिए सुनने का प्रयास करना चाहिए। जैसे बच्चों को मैथ्स नहीं पढ़ने शुरुआत में समझ में नहीं आए तो बच्चे लोग मैथ्स पढ़ना छोड़ देते हैं, क्योंकि आप आगे जाकर के कहना चाहिए बीटेक अर्था एमटेक अर्था कुछ भी संस्कृत बना सकते हैं, आपकी इंजीनियरिंग के अर्थ के लिए कुछ भी आप करते हैं तो भले ही शुरुआत में ना समझ में लगा रहता है व्यक्ति, उसी प्रकार से शुरुआत में भले कथा थोड़ी समझ में ना आए लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करता रहेगा तो समझ में आने लग जाएगी। और इस प्रकार से भगवान के अच्युत, भगवान के संरक्षण में उनको समझ करके बड़ी आसानी से उनकी शरणागति को स्वीकार करता है और परागति अर्थात भगवान के प्रेम से भरा हुआ पार्षद बन के भगवान के धाम की प्राप्ति करता है। तो उम्मीद है कि आप लोग कुछ लोग समझ में आए होगा, और अधिक समझ में आएगा अगर इसकी चर्चा घर में जाके आप लोग नहीं करेंगे। देखिए जब नहीं समझ में आता है, जब चर्चा करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आपको क्या समझ में नहीं आया, तो फिर अगली बार आप फिर से पूछ सकते हैं, हाँ प्रजी समझ में नहीं आया इसकी हम फिर से समझावट करें। हाँ एक बात है कि मुझे बहुत समझ में आता है क्योंकि मुझे तैयारी करनी पड़ती है, समझाना होता है, लेकिन इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। श्रीमद् भागवतम सुनने वाले व्यक्ति को बहुत कृपा मिलती है। खैर अभी हम लोग कीर्तन करेंगे, कीर्तन करने में तो कोई कठिनाई नहीं है। कीर्तन के संबंध में एक छोटा सा श्लोक है, कभी आगे चर्चा करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मृत्यु के समय कोई अनजान में भी ना चाहते हुए भी भगवान का नाम उच्चारण कर देता है तो उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो आचार्य लोग कहते हैं कि जब ऐसे अनमने ढंग से अगर कोई हरे कृष्णा कर दे तब भगवत प्राप्ति होती है, केवल कीर्तने मतलब बोलने मात्र से, तो अगर ध्यान पूर्वक करेगा तो कितना फायदा होगा। ये कैमुत्तिनाय बड़ा मजेदार है, बहुत उसको आचार्य खूब जम करके